أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عزيزو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس تعداد میں دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ مرحلہ جو ہوتا ہے تعلیم سے فارغ ہونے کا، یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی تعلیمی زندگی میں سب سے اہم مرحلہ کون ہوتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ فارغ ہونے کے وقت سے لے کر دو تین سال تک، کم سے کم تین سال تک، یہ مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تعلیم کا نظام ہے، یہ علم حاصل کرانے کا نظام نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا نظام. آپ یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کس طرح اپنے علم کو بڑھائیں گے اور علم حاصل کریں گے، اپنی محنت سے علم کو کس طرح آپ حاصل کریں گے. زمانۂ طالب علم میں تو آپ اساتذہ کی محنت سے علم حاصل کرتے ہیں، خود ہی محنت کرتے ہیں، لیکن اساتذہ کے سرپرستی میں اور کے مدد سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. وہ علم جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، پھر اس کو بہانا آپ کا کام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر فارغ ہونے کے بعد جن لوگوں نے محنت کی اور کئی سال انہوں نے محنت میں گزارے، تو ان کی شخصیت ابھری اور وہ کام کے آدمی بنے. اس لیے فارغ ہونے کے بعد کا مرحلہ جو ہے اس کی بڑی سی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اس مرحلے میں توجہ سے کر لیں اور محنت کریں. یہ خاص طور پر آپ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ نے جگہ کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا ہے، اور یہ جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی آپ نے بہترین مقصد کو آپ نے اختیار کیا. آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اس پہ آٹھ نو سال، دس سال، بارہ سال یا پھر کم بیش آپ نے لگائے، تو یہ ایسا ہے جیسے باغبان کو کوئی پودا لگاتا ہے اور جب تک وہ بڑھ کر پھل دینے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بڑی نگہداشت کرنی پڑتی اور نظر رکھنی پڑتی ہے کہ یہ پودا کہیں سوکھ نہ جائے، کہیں یہ حفاظت کے مرحلے سے نکل نہ جائے. اور جب وہ پھل دینے لگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بہت تھوڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. وہ پودا خود اس اپنی صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ پودا کام کرنے لگتا ہے. اور جن اس پودے کو نگرانی نہیں ملتی وہ بے چکا ہو جاتا ہے، اور اس میں عجوب پیدا ہو جاتے ہیں جیسے خود رو گھاس ہوتی ہے. تو یہ مرحلہ تعلیم کا ہے، پورا کرنے کے بعد آپ ٹریننگ کے مرحلے میں آئے ہیں، اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو آپ کیسے بڑھائیں اور کیسے اس کو مفید بنائیں. اس کے لیے آپ کو اپنے زمانے کے حالات دیکھنے ہیں، اور جو چیلنج ہیں ان چیلنجوں کو دیکھنا ہے. چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے فلاں مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، یہ بات سامنے آتی ہے. اب جو لوگ صاحب علم ہیں اور صاحب فہم و ادراک ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ سوال جو پیدا ہوا ہے اس کا کیا جواب ہے، یہ جو تقاضا پیدا ہوا ہے اس تقاضے کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح کی ضرورت ہے، जिस सलाहियत की जरूरत है उस सलाहियत से उसको पता करने की जरूरत होती है। अगर वो सलाहियत नहीं है तो उसको नहीं पूरा करेगा। आपने इल्म हासिल किया है लेकिन इल्म की जो बुनियादी बातें हैं जिनसे वो इल्म उभरा है और उनसे इल्म निकला है और उन्होंने दीनिया की बुनियादी बात क्या है, कुरान हदीस। तो कुरान हदीस का ऐसा फहम आपको पैदा करना है कि इससे वो जो मसाइल उभरेंगे जिनका ताल्लुक कुरान हदीस से है, कुरान हदीस के अहकाम से है, उन मसाइल का आप जवाब दे सकें, उनका हल निकाल सकें और उस जरूरत को आप पूरा कर सकें जरूरत पैदा होगी। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो मुल्क उसमें हम अकलियत में हमारे या हमारे औरों की सरपरस्ती हुकूमत से नहीं होगी, इसलिए हुकूमत से कुल है। अगर हम खुद और अपने उलूम की सरपरस्ती न करें और उसके मसाइल को हल न करें तो ये उलूम मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है खुद और तो उभरें, इनको इंसान की सलाहियतों से ये उभरते हैं। ये इस्लाम जब आया तो उस वक्त उम्मी कौम में आया था, वो लोग तालीम से बिल्कुल दूर थे, तालीम से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उनके यहाँ उलूम नहीं थे। तालीम जो नहीं थी तो उलूम नहीं थे उनके यहाँ, सिर्फ उनके जो मुशाहदात थे और जो उनके अपने इंफरादी तजुर्बात थे उसी से जितना उन्होंने अर्ज किया था वही उनके पास था। फिर इस्लाम ने सरपरस्ती की इल्म की, अल्लाह ताला के उसे हुक्म हुआ, अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया तो मुसलमानों और इल्म में बहुत तरक्की की। अब जब मैदान में आए तो दीन को लेकर आए थे मैदान में और दीन के लिहाज से और उस जमाने के हालात के लिहाज से जो मसाइल उभर के आए सामने और जो चैलेंजेस आए और जो तकाजे पैदा हुए लोगों ने और हमारे किराम ने जिनको कुरान हदीस पर के उलूम पर उनसे वाकफियत थी और उस पर काबू था उनको, उन्होंने उन चैलेंजों का मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला किया कि जितने तकाले हो सकते थे ज़िंदगी में और जो मसाइल हो सकते थे सबके जवाब उन्होंने तैयार किया। ये जमाना तदवीन जमाना कहलाता है जो तीसरी सदी हिजरी में अपने कमाल अपने उसमें कमाल पर था और वो जितने तकाले पैदा हो सकते थे, जो मसाइल पैदा हो सकते थे, जो चैलेंज सब का उन्होंने हल सामने पेश किया, जिसको सका की सूरत में आप देखते हैं। तो सका क्या है? सका जो है वो समझ सका, समझ हर चीज़ की सका हो सकती है, जिस चीज़ की मैं समझ को काम ले समझ से काम लेना है वो फिका है। तो ये फिका जो है ये हकीकत में कुरान हदीस के की समझ का नाम है। तो कुरान हदीस में से जो हमको जो बातें मालूम हुई हैं उनका इंतबाक हम कैसे करें ज़िंदगी पर और कैसे उसको ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाएं। इसलिए कि ज़िंदगी उस वक्त उम्मीद लोगों की ज़िंदगी थी जिनके कोई मसाइल ही नहीं थे, वह सहरा में रहते थे और जो ज़ाहिरी चीज़ें थी उसका फ़ायदा उठाते थे, उनको न ज़्यादा सोचना था न उनके सामने कोई चैलेंज था। लेकिन अब इतना ज़बरदस्त चैलेंज मुसलमानों के सामने आया कि सारी दुनिया गुमराही में मुब्तला थी और जो लोग दुनिया में राइज थे वो मुशरिकों के वलूम थे, ईरान के मुशरिकों के और ईरान के मुशरिकों के इन लोगों के वलूम थे कि जिनका टकराव था हमारे दीनी वलूम से और दीनी मसाइल से उनका टकराव था। तो हमें उनसे तो मदद मिल नहीं सकती थी, हमको जो कुछ लेना था कुरान हदीस से लेना था और कुरान हदीस से हम किस्ता ले सकते हैं जिसकी समझ पैदा करें। कुरान हदीस में मुजमल चीज़ें आई हैं, हदीस शरीफ में माशरे को सामने रख कर जो माशरा उस वक्त था मुसलमानों का उन पर उनके उनसे इंतबाक पैदा करने वाली बातें सामने आई थी। ऐसा तो नहीं था कि वसल्लम को यार डिक्शनरी तैयार कर रहे थे कि सारे उलूम की डिक्शनरी तैयार हो जाए कि कयामत तक जो उलूम आएंगे सबके उसमें सबके नाम और सबकी तफरी हो, ऐसा नहीं था। आपने जो जिंदगी जो मसाइल जिंदगी के सामने आए उसके मुताबिक आपने अल्लाह के हुक्म को बताया बताया। अब उसको सामने रखकर हमें अगर कोई नई बात सामने आती है तो उसके मुताबिक हमको उसका फैसला करना होगा। जाहिर है बगैर कुरान हदीस की फहम के ही काम नहीं हो सकता। जो कुरान हदीस के उलूम को सिर्फ जानता है और उसको उसकी गहराई में उतरने और उससे जो उसकी जो तफरीहात हैं और उससे जो जो चीज़ें उभरती हैं उनको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कहीं इतफाक करेंगे, इतफाक नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि मुख्तलिफ ये जो मसलक बने हैं ये मसलक कैसे बने हैं, इसी फैन के बने बने हैं, कुरान हदीस के फैन के बिना पर ये मसलक बने हैं कि जो अइमा फिक्ह हैं जिनके मसलक चल रहे हैं उन्होंने कुरान हदीस के अहकाम को सामने रखकर उसको समझा और उसको मुंतबिक किया उन मसाइल को कि जो मसाइल नए पैदा हुए उनको मुंतबिक किया, तो अपने फैन के मुताबिक उन्होंने मुंतबिक किया। और चूंकि वो बहुत सारे फैन लोग थे इसलिए उनके इंतबाह को सबने तस्लीम किया और इंतबाह के मुताबिक ये दौर आया। और इसमें हमारे उलमाए कराम उस जमाने के उलमाए कराम ने पूरा हक अदा कर दिया, यानी जिंदगी के सारे तकाजे तकाजे उन्होंने अपने सामने रखे और सबके लिए हल उन्होंने बता दिया और अपनी फहम से काम लिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उसी पर लोग चलते रहे, उसी को अपने लिए उन्होंने रहनुमा समझा और उसी पर वो जिंदगी चलती रही। सदियों ये सिलसिला रहा। अब जो इस वक्त जो मुसलमान बहुत जवाल की हालत में आ गए और उलूम के मामले में उन्होंने अफसंदगी का तरीका अख्तियार किया और उनकी जो गैर कौमें हैं उन्होंने उधर मेहनत की और वो मादी उलूम में उन्होंने बहुत तरक्की की। दीनी उलूम से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी और न होनी चाहिए थे वो, लेकिन वो दीन पर आमिल नहीं थे, न मादी तरक्की होने की। मादी तरक्की करने से जिंदगी के कुछ नए मसाइल सामने आ गए और जिंदगी का ढांचा और कुछ तब्दील हो गया। पूरा दो सदी से ये बात पैदा हुई। अब ये मसला था कि अब हमें ये नई चीज़ें पैदा हुई हैं जिंदगी के नए तकाजों की वजह से, जिंदगी के नए मसाइल की वजह से, इनका क्या हल है? बस इनका हल जाहिर है हमें उस दीनी उलूम में फहम, अगर हमें फहम की सलाहियत होगी तभी हम इनका हल निकाल सकते हैं। उन लोगों के नक्श कदम पर चलते हुए जो हमारे आइम्मा गुजरे हैं शुरू की सदियों में, उन्हीं उनके तरीक़ार को हम सामने रखते हुए उसका हल निकालेंगे। और जाहिर है मसाले से खड़े हुए हैं। मसल आप देखिए आप कि हम गए यूरोप लंदन से ऊपर उसका इलाका जो है वहाँ ये शफक डूबती नहीं। एक साल में एक मरला ऐसा आता है, मौसम ऐसा आता है कि शफक डूबती नहीं, तो वही शफक है वही फज्र में तब्दील हो जाती है और वो कब तब्दील होती है तो दामी बता भी नहीं बचता। शफक है उस शफक का नाम कुछ अर्से के बाद कुछ मुद्दत के बाद उसको आप उसका नाम फजर ले देंगे। अब वहाँ मसला खड़ा हो गया। वहाँ उलमा तीन हिस्सों में बढ़ गए, तीन हिस्सों में कैसे बैठे अपने अपनी फहम के मुताबिक बैठे। एक ने तो ये कहा कि हम आधा आधा तकसीम कर लेंगे, यानी ये रोशनी जो है ये आधी रोशनी तो हम उसको शफक मानेंगे और बकिया आधी जो है उसको हम फजर मानेंगे, ये सब कर लेंगे। इसलिए कि ये बताना मुश्किल है कि ये कब फजर बनी। ये रोशनी है कायम है तो उसके बाद सूरज निकल आएगा, तो सूरज डूबने और सूरज निकलने के दरमियान एक रोशनी है मुसलसल। अब उसको एक ने कहा और एक ने कहा कि नहीं हम ये करेंगे कि डेढ़ घंटा जो आखिर का है इसको हम फजर में तस्लीम करेंगे और शुरू का डेढ़ घंटा जो है इसको हम सबक मानेंगे। ये आमतौर पर डेढ़ घंटा होता है कुछ तरह का चलने हो कि फजर से शुरू आफ्ताब तक डेढ़ घंटे का रिमोर्स होता है। और यही सबक का भी मसला है कि सूरज डूबने से डेढ़ घंटे बाद ईशा के वक्त शुरू तकरीबन, तो उनके हम डेढ़ घंटे को मान लेते हैं। डेढ़ घंटा जो आखिर का है वो फजर का है और डेढ़ घंटा जो शुरू का है वो शफक का है। हम जब डेढ़ घंटा रह जाएगा सूरज निकलने में तो हम उस वक्त से समझेंगे वो फजर का वक्त हो गया। तीसरी राय ये हुई कि नहीं, जहाँ पर ये मसला नहीं पैदा होता शफक और फजर के मिल जाने का, तो करीब तरीन ऐसा इलाका जहाँ ये मसला नहीं पैदा होता वहाँ के वक्त को हम अपना वक्त बना लेते हैं। वही तकरीबन डेढ़ घंटे का मसला। अब वो जगह कौन सी करीब है? मराकश। मराकश उनके करीब है तो उनके मराकश के उनके वक्त को हम अपना वक्त बना लेंगे। ये वहाँ मसला था। हम लोग इतवा में उन्हीं दिनों गए वहाँ, मालूम हुआ जहाँ ठहरे उसकी मस्जिद में मालूम हुआ कि यहाँ 12 बजे रात को और उसके बाद लोग आके फजर की नमाज पढ़ के चले जाते हैं, फिर सोते हैं और सब तक जागते हैं। दोनों ने कहा भाई हम तो वही डेढ़ घंटे वाली बात करेंगे। तो ये क्या इफ़ान के फर्क, हर एक अपने इफ़ान के मुताबिक उन्होंने इस मसले का हल सोचा। इस तरह आप देखिए पानी का मसला होता है के अनाज के यहाँ पानी के में की तहारत में शिद्दत है, दर्दा है और दूसरी चीज़ें हैं और पानी कम नजीस हो जाता है कभी। और आप देखेंगे कि मालिकियों के यहाँ अम्बरियों के यहाँ पानी में बहुत तो उसमें बहुत रियायत है, पानी जल्दी उनके यहाँ तहरी नहीं होता। तो अब ये क्यों है ऐसा? पानी का हुक्म तो एक ही हुक्म है, ये फर्क क्यों हुआ? यही फर्क क्यों हुआ? बाकी है कि वो इलाके जहाँ पानी बहुत बहुतात से हासिल है, पानी की कोई दुश्वारी नहीं है, तो वो एहतियात की तरफ गए, उन्होंने उसमें एहतियात रखी। और ऐसे इलाके हैं दुनिया के जहाँ पानी की बड़ी दुश्वारी है, बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, तो वो अगर पानी के अंदर वो रियायत वाला तरीका, वक्सत वाला तरीका ना इख्तियार करें तो फिर वो वजू करना उनका मुश्किल है, पानी इतना नहीं मिलेगा वजू करें। वहाँ जाके देखा, वहाँ मराकश में देखा, जजायर में जहाँ मालिकी मतलब पर हामिल हैं, तो वहाँ देखा कि वहाँ पानी के मामले में वो एहतियात इतनी नहीं है जितनी एहतियात हमारे अहनाफ के यहाँ है। अहनाफ आप देखेंगे वो इलाके जहाँ अनाफ कसरत से हैं बल्कि उन्हीं की आबादी है, वहाँ आप पानी की सख्ती देखेंगे। और वो इलाके वो है कि जहाँ खूब पानी है, खूब दरिया बह रहे हैं और नहरें हैं, पानी आसानी से मिलता है और उनको कोई दुश्वारी नहीं पानी में सख्ती करने के मामले में। लेकिन वहाँ आप नज़द में चले जाइए या मराकश और अलजायर में चले जाइए, वहाँ बड़े बड़े सहरा हैं और वहाँ पानी बहुत दुश्वारी से और कम मिलता है। तो वहाँ के लोग इस पर मजबूर हुए कि उसमें जो रुख्सत हो सकती है उस रुख्सत को तैयार करें और उसी के मुताबिक मसले बताएं। और यहाँ ये तुर्किस्तान का इलाका है, ये बुखारा और समरकंद, ये इलाका भी दो बड़े दरियाओं का इलाका है, यहाँ बड़ी शादाबी है, बहुत पानी है। इस तरह हमारा ये बदसरीर है हिंदुस्तान, यहाँ खूब दरिया बहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमें भी मतलब इन इलाकों में ज़्यादा आपको मिलेगा। और इसी तरह शवाफे को देखिए, शवाफे आमतौर पर साहली इलाकों में आपको मिलेंगे, शवाफे के यहाँ दरिया की हर चीज़ जो है वो पाक होती है, इसलिए कि उनकी गजा का वजूद है। अब वो उसके मतलब फाका करना पड़ेगा उनको बहुत बाद इलाकों में जहाँ उनको गजा नहीं मिल सकती, तो उनके यहाँ उसमें जो गुंजाइश थी उनके फैन के मुताबिक उस गुंजाइश से उन्होंने फायदा उठाया। जैसे आप के यहाँ दरिया के मामले में इतनी गुंजाइश दी गई, अनाथ के नहीं, अनाथ के इलाके वह हैं जहाँ गजा की ये दुश्वारियाँ नहीं हैं। ये सब चीजें जो हैं हालात को सामने रखकर और फैम से काम लेना पड़ता है। तो दोनों बातें हैं, एक तो फैम से काम लेना पड़ता है, फैम कौन सी दीनी फैम, आम फैम नहीं बल्कि उलूम दीनिया की फैम, कुरान हदीस को समझने की सलाहियत के, कुरान हदीस में एक हुक्म दिया गया है उस हुक्म का मिजाज समझने की जरूरत पड़ेगी, हुक्म का जो मिजाज है उस मिजाज को सामने लाना पड़ेगा, उस मिजाज के मुताबिक हमें फिर मसले को हल करना पड़ेगा। यही हमारे असलाफ ने किया और इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बहुत जहालत का और बड़ी सही बहुत अच्छी फहम का सबूत हमें इमाम हनीफा और उनके शागिर्दों के मिलता है। गौर कीजिए आप तो बहुत ज़्यादा उससे मिलता है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर उस इलाके के लोग हैं कि जहाँ पानी की सहूलत गज़ा की वो दुश्वारियाँ नहीं हैं। तो लेकिन ये चारों मसलक इसीलिए सब सही समझे जाते हैं कि इसमें इनके अइम्मा ने बहुत अपनी बेहतर से बेहतर फहम का सबूत दिया है कुरान हदीस से जो चीज़ें आपकी गई। सवाल ये है कि हम इस दौर में नए मसाइल हमें साफ करना पड़ा है, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हमें चैलेंज सामने हमारे सामने आ गए हैं। हम जैसे हमने आपके सामने वो फजर और उसका मसला रखा, इसी तरह मसलन अब ऐसी सवारियाँ निकल आई हैं कि सूरज से ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं फिजा में, रॉकेट हैं और हवा और जहाज ऐसे निकल आए हैं कि सूर्य की रफ्तार से वो ज़्यादा चलते हैं। अब मसला आप हिंदुस्तान से आप जोहर की नमाज पढ़ के चले और वहाँ पहुँचे जिस जगह जा रहे मालूम हुआ वहाँ उतरे मालूम हुआ अभी जोहर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ, अभी जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ और आप वहाँ पहुँचिए तो आप तो जोहर पढ़ा रहे हैं और जोहर का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। अब ये मसाइल हैं, तो इस तरह के और मसाइल आपको मिलेंगे जो इस दौर के की जिंदगी की वजह से पैदा हुए हैं, वो हल होंगे। ले कुरान हदीस, क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया। मुकम्मल करने का मतलब क्या है कि उसमें कोई कमी नहीं, मुकम्मल का मतलब कमी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसमें कमी रखी नहीं। हमें अगर कमी महसूस हो रही है तो हमारी फहम भी कमी, ये हमारे फहम की कमी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, वरना अल्लाह ने तो कोई कमी रखी नहीं। जब उसने कह दिया अकवा तो आरकूँ अकवा लकूँ दी रखूँ, तो इसका मतलब है कि अब ये नहीं बात है कि उसमें कोई कसर रह गई हो, कसर कोई थी नहीं। कसर अगर है और हम मिलती है तो हमारी फहम की कसर, हमें अपने फहम का इलाज करना चाहिए। और फहम कौन सी, उलूम कुरान और हदीस के समझने की फहम। फहम हर चीज़ की अलग अलग होती है, साइंस के समझने की फहम अलग है, मादी चीज़ों के समझने की फहम अलग है, लेकिन दीनी चीज़ों के समझने की फहम अलग है। और वो इन उलूम को पढ़ने और इन उलूम को समझने के बाद पैदा होती है। इन उलूम को आप इस तरह पढ़ें कि आप उसके मिजाज को समझें, आकाम के मिजाज को समझें, तब आप में आप अपनी फहम से सही तौर पर काम ले सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है हमारा, ये दार क़ज़ा का दार इफ्ता का इसी ट्रेनिंग का सिलसिला, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ के आए मदरसों से तो अभी आप उस दर्जे तक नहीं पहुँचे कि आप अपने जो आपकी जितनी फहम उस पर इतफा कर लें। आपको वो अब आपको वो फहम अपने वो फहम पैदा करनी है कि सही रास्ते से और सही तरीके से आप उन मसाइल का हल पेश कर सकें और बता सकें। आपसे मसला पूछेगा कोई साहब हमें ये दुश्वारी पैदा हो गई है बताइए इसमें क्या शरीयत है क्या हुक्म है, तो अगर आप उलूम पर आपको उबूर हासिल नहीं है फहम वाला उबूर, तो आप उसको मसला नहीं बता सकते। और फिर मज़ाहिर दूसरे के सामने ये आएगा कि दीन नाकिस, यानी आपकी कमजोरी का इल्ज़ाम दीन पर आएगा, कहेंगे दीन पुराना हो चुका, अब ये जमाने में चल नहीं सकता। जैसे कि आप देखते हैं ये कहते हैं नए तालमी अफसर लोग कहते रहिए पुराने दिन पुराना हो चुका, अभी जमाने में चल नहीं सकता, तो ये क्यों कहते हैं? इसलिए हम जवाब सही नहीं दे पाते, हम ऐसा जवाब नहीं दे पाते कि जिससे दीन के मुकम्मल होने का सबूत सामने आए, और वो हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम उसकी ट्रेनिंग हासिल करें और वो अपने में वो फैन पैदा करने की का जो तरीका अख्तियार करें वो ऐसे ही होगा, उसके लिए कोर्स रखे जाए। यानी वो कोर्स क्या है? इल्म को अमली बनाना, इल्म को अमली बनाना। यानी आप जो मसल जैसे आगे दौलत आ रही है, आप उस दौलत को सही तौर पर इस्तेमाल करना ठीक है, वरना आप रखे रहेंगे तिजोरी में, आप खर्च नहीं कर सकते तो क्या उस दौलत से क्या फ़ायदा है? जो इल्म आपने हासिल किया उस इल्म को अमली बनाना, यानी उस इल्म से फ़ायदा उठाना और फ़ायदा पहुँचाना, तो ये यूँ ही नहीं होगा, इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसके लिए जो उसके माहिरीन हैं उनसे सीखना होगा कि हम अपनी फहम को किस तरह इस्तेमाल करें ताकि हम मुफीद हो सकें और हम वक्त के चैलेंजों का वक्त के तकाजों का हम हल पेश कर सकें, लेकिन वो कुरान हदीस की छतरी के नीचे रहे, अरे दूसरे की छतरी नहीं इस्तेमाल करनी है, कुरान हदीस की छतरी के नीचे करना है, इंसानों के आम इंसानों की जो अकल है उसकी छतरी में नहीं, कुरान हदीस की छतरी में। ये आप देखेंगे कि जो लोग कुरान की छतरी के नीचे कुरान की छतरी के नीचे रहकर मसाइल का हल नहीं बताते वो बहक जाते हैं, वो शुजूल इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे ऐसी मिसालें हैं, नाम नहीं लेते हैं किसी का, लेकिन ऐसे लोग हैं। सुनो मैं कुरान हदीस को पढ़ा तो, लेकिन कुरान हदीस से इस्तेफादे की जो सलाहियत है वो सही सलाहियत उनमें नहीं पैदा हुई, इसलिए कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको ऐसे लोग नहीं मिले कि जिनसे वो सही अपनी फहम को सही बना सकें और कुरान हदीस की छतरी के अंदर रहते हुए अपनी फहम को इस्तेमाल करें, तो उनके यहाँ शुरू आपको मिलेगा। और ये उम्मत में ऐसा होता रहा है तारीख में कि ऐसे लोग ही पैदा होते रहे जिन्होंने शुरू इख्तियार किया, मुख्तलिफ मसाइल में शुरू इख्तियार किया, क्यों? इसलिए कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि अपने फैम को कुरान हदीस की छतरी के नीचे रखकर वो फैम अपने में पैदा करें। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है, और जैसे कि मौलाना वाले साहब ने कहा कि ये जगह जगह ऐसा होना चाहिए ताकि उम्मत फैली हुई है पूरे मुल्क में, बड़ा मुल्क है, वसी मुल्क है, तो जगह जगह अगर सेंटर हों तो उससे उम्मत की जरूरत पूरी होगी। और दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, नए नए जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये ज़रूरत चलती रहेगी, ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, और इसके लिए हम लोगों को जो इंतज़ाम हो सकता है करना चाहिए, ये तो इंतज़ाम है। हमें बड़ी खुशी है कि शरिया में इसका बहुत बेहतर इंतज़ाम है और मरकजी है जो इसको हासिल है, और दूसरे का जहाँ जहाँ ऐसे सेंटर कायम हो रहे हैं वो यहाँ की रहनुमाई में और यहीं की ये मिसाल इसको मिसाल बनाकर और कायम हो रहे हैं, ऐसे यहाँ से जो रोशनी माशाल्लाह मुल्क में फैल रही है तो बहुत काबिल कदर है और इससे मसलत है। अल्लाह ताला इसको कायम रखे और इसमें और ज़्यादा इन हजरात की सरपरस्ती के ज़्यादा लोग हासिल हो और नए सेंटर खुलें इसके इसी के नमूने पर, और इन लोगों की सरपरस्ती रहे तो इंशाल्लाह ये चीज़ पूरी उम्मत के लिए बहुत मुफीद होगी और दीन के मुकम्मल होने का सबूत पैदा करेगी। हमारी कोताहियों को हमारी कमजोरियों को माफ़ फरमा और हमको दीन की सही समझ अता फरमा और दीन की नुसरत और इस उम्मत की नुसरत की हमको तौफीक अता फरमा और वो हम دین کی تقویت کے لیے اور دین کی ضرورت کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے ہے وہ بغیر اس کی صلاحیت بھی پیدا فرما اور اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ بھی پیدا فرما اور پھر ہم کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مذہبی کے مطابق عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ جو انتظامات ہیں دین کو سمجھنے کے اور دین کے مسائل کو حل کرنے کے اور جو تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کو قبول فرما اور ان کی حفاظت کو وسیع اور عام فرما اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو ذرائع خیر عطا فرما وصلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
نماز حضرت یہیں مہمان خانے میں.